अब अगले मौजू पे चलते हैं। तीसरा मौजू आज के सबक का वो क्या है? इद्दत, बेबाकी। देखते हैं आयत नंबर 234 और 5 को, इंशाल्लाह फिर इसके अंदर इद्दत के मसाइल हैं, खास तौर पे बेबाकी की इद्दत। वल्लज़ीना युतवफ़ाउन मिनकुम, और वो लोग जो तुम में से फौत कर दिए जाएं। यहाँ देखिए युतवफ़ाउन मजहूल है, क्योंकि को खुद तो नहीं फौत होता ना, अल्लाह ताला के हुक्म से फौत होते हैं। मिनकुम व यजरून अज़वाजन, और इनकी बीवियां जिंदा हों। आयत पे नजर है सबकी, पारे पास करें, कॉपियां छोड़ दें इस वक्त, बिल्कुल आयतों के ऊपर नजरें गाड़ दें। और तुम में से जो लोग, तुम में से कौन है? मिनकुम, मुसलमान मर्द, जो फौत हो जाएं, व यजरून अज़वाजन, और बीवियां छोड़ दें। अभी तक जितनी भी इद्दत की बातें हुई वो कौन सी थी? तल्लाकी, तल्लका औरत की इद्दत। अब यहाँ बेवा की इद्दत है, क्या करें? या तरबसना, वो खुद को रोके रखे। बी अनफुसी हिन्ना, अपने नफ्सों के साथ। अरबत अशहुरिम व अशरा, 4 महीने और 10 दिन। फिर क्या होगा? फैजा बलगना जला हुन्ना, फिर जब वो अपनी मुद्दत को पहुंच जाए, यानी उनकी इद्दत पूरी हो जाए, इद्दत का मामला यानी पूरा हुआ, 4 माह 10 दिन गुजर गए, तो फिर क्या करो? फला जुनाह अलैकुम, फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। किस बात में? फी मा फअलना फी अनफुसिहिन्ना, जो मामला वो अपने मामले में करें, यानी फिर जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए, तो वो जो कुछ जायज़ तरीके से अपने लिए करें, यानी दूसरा निकाह करें, उसी घर में रहें ससुराल के साथ, या चली जाएं, वट सो एवर, तो इस पे तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। और जो कुछ भी तुम करते हो, वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह ताला उसकी खूब खबर रखता है। यहाँ एक हुक्म है, लेकिन बात आगे पूरी होगी, मैं इस पे इकट्ठी बात करूंगी आयत को पूरा करके। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर इस पे भी कोई गुनाह नहीं। फीमा अर्रत तुम भी मिन खितबत निसा, ऐसी बेवाओं को अगर तुम इशारे किनाए से निकाह का पैगाम दे दो, औ अकनन तुम फी अनफुसिकुम, या अपने दिलों में कुछ बात छुपाए रखो, यानी इरादा है कि दिल में कुछ करूंगा तो कोई हर्ज नहीं, यानी दिल में ख्याल है, बड़े ही नपे तुले अंदाज से इशारतन कह दिया जाए कि इद्दत के बाद अगर निकाह से पहले मुझसे पूछ लिया जाए, या मेरा इरादा है, या हम भी सोच रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं। अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतस्कुरूना हुन्ना, और अल्लाह को ये खूब पता है, अल्लाह जानता है कि तुम इन्हें दिल में याद रखते हो। यानी जब एक औरत तन्हा होती है ना, कंवारी हो या शादीशुदा औरत वापस आती है, तो बहुत सारे लोगों की नज़रें उस पर होती हैं। शादी को इसलिए भी वलमुहसना के नाम पे कैद वाली औरतें कहा जाता है कि औरत सिक्योर हो जाती है, सब कहते हैं बस अब ख़त्म, अब ना इस औरत का जिक्र करो, ना इस लड़की के बारे में सोचो। बात सुबह तो मंगनी के बाद से ही लोग सोच लेते हैं कि अब ये लड़की हमारे लिए नहीं रही, तो औरत सिक्योर हो जाती है। लेकिन जब तक अकेली होती है तो बहुत सारों की नज़रों में होती है। इसी तरह जब बेवगी या तिल्लाक होती है, तो उन दोनों सूरतों में औरतें नज़रों में आने लग जाती हैं। हर एक सोचता है अच्छा अब उधर भी एक औरत है, अच्छा उसकी उससे करा दे, ऐसे ही लोग सोचते रहते हैं। तो अल्लाह कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे दिलों में ये ख्याल आना है, लेकिन वला किल्ला तो आई दू हन सिर्रन, लेकिन इनसे कोई खुफिया माहदा ना कर लो, यानी इद्दत में किसी लड़के या मर्द के साथ छुप छुपा के कोई खुफिया रिश्ते नाते और इस तरह के ना कर लो। इल्ला अन तकूलु कौलम मारूफा, हाँ जो बात करनी हो अच्छे तरीके से करो, यानी इशारतन बात करनी भी पड़े तो बड़ी मुबहम हो, कोई उसमें इंटीमेसी नहीं है, कोई उसमें लव लेटर्स नहीं लिखे जा रहे, कोई उसमें शादी से पहले ही अपने आप को उसके सामने दिल फेंकने वाली कैफियात ना हो, तो कर लो। ठीक है, जो नहीं करना वो क्या है? वला ताज़िम उक़दतन निकाह, लेकिन इनसे कोई खुफिया माहदा ना करना निकाह का, कोई निकाह ना पढ़वा ले। हाँ जब ये करना पड़े तो हद तयबलुगल किताब अजलहू, हाँ जो बात करनी हो अच्छे तरीके से करो, मगर जब तक कि उनकी इद्दत ना गुजर जाए, निकाह का आकद बांधने का अज़्म ना करो। वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अन्फुसिकुम, जान लो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह इसको खूब जानता है। फ़ख़्ज़रूहु, बस उससे डरते रहो। वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और खूब जान लो कि अल्लाह इंसान की लग्जिशों को, उसकी गलतियों को माफ़ भी करता है, और वो बुर्दबार और हलीम भी है। ये है वो आयत जो बेवा औरत की इद्दत के सिलसिले में आखिरी हुक्म है, जहाँ कल के सबक में आपको वो आयत भी मिल जाएगी जो इस्लाम से पहले से चल रही थी, वहां आपको हिस्ट्री सुनाऊंगी। लेकिन आज वो आयत है हमारे सामने कि अगर खुदा ना खास्ता किसी औरत का शौहर फौत होता है उसकी जिंदगी में, तो फिर बीवी क्या करेगी, किस तरह से होगी, उसकी कुछ पाबंदियां हैं, वो सारी यहाँ अल्लाह ताला ने बता दी हैं। पहली बात याद रखिए कि कोई औरत तलाक के जरिए से अलग हो या बेवगी के जरिए से तन्हा हो, वो मनहूस नहीं होती। ये लिख लें, बेवा औरत मनहूस नहीं होती। कि आप उसको शादी में ना बुलाएं, आप उसको अच्छा कपड़ा पहने देखें तो करें कराएं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ मजाहिब में इसमें इतनी ज्यादा अफरात और तफरीत है कि औरतें फिर चाहती हैं कि मर्द के साथ ही मर जाएं। इस्लाम ने बेवा औरत को जिंदा रहने का हक दिया, पूरी तरह जिंदा रहने का। जिस तरह एक सुहागन शोहर वाली औरत जिंदा रहती है ना, उसकी खुशियां उसके गम में, इसी तरह यहां भी रखा। यहां सिर्फ उस टाइम पीरियड की बात है जो शौहर की वफात के बाद है, उसको यहाँ तरबुस कहा गया। अभी तक जितनी बात तलाक की सूरत में हुई थी, 3 माह की, सलासा तकरू की, या वजह हमल की बात जो अगले सबक में आएगी, तो वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ दूसरे निकाह तक थी। ठीक है, एक औरत तलाक की इद्दत में होगी तो यह तरबस ना कमानी के दूसरे निकाह से रुकना, दैट्स इट, खत्म। लेकिन यहाँ तरबुस किस चीज़ से? नंबर एक, दूसरा निकाह नहीं कर सकती, जैसा कि आयत के अगले हिस्से से पता भी चल रहा है कि निकाह भी नहीं कर सकती, निकाह वाली बातें भी नहीं कर सकती किसी मर्द से। कोई औरत मर्द फोन पे, चैटिंग पे, फेसबुक पे बातें शुरू हो गए हैं, चलो अब ये बेवा हो गई, अब मैं इससे शादी कर लूंगा, इस्लाम इसको बिल्कुल नहीं जायज़ देता। दूसरी चीज़, औरत जीनत नहीं कर सकती, जेबो जीनत, अपने आप को सजाना संवारना। अब इसमें क्या कोई रंग की बात है कि औरत सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनेगी और सफ़ेद कपड़े पहनेगी, सफ़ेद दुपट्टे, ऐसी बात नहीं है। वो कपड़े जो घर के होते हैं, बाज़ दफ़ा गर्मियों में औरतें आम इस्तेमाल के कपड़े गहरे रंगों के बना लेती हैं, मैरून है, दबा हुआ है, कहीं ब्राउन है, कहीं उसमें थोड़ा ऐसे कोई गहरे, जिसको देख के लग रहा है कि ये घर के कपड़े हैं, कोई हर्ज नहीं है। वो कपड़े जिनको देख के लगता है क्या पहनने उड़े हैं, शादियों में पहनने वाले पार्टी ड्रेसेस हैं, फैंसी क्लॉथिंग है, वो नहीं पहन सकती, जेवर नहीं पहन सकती। हत्ता कि नाक की कील है तो उसको भी निकाल देना चाहिए, हाथों की चूड़ियाँ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो जीनत के लिए अमूमन पहनी जाती है, औरत वो नहीं कर सकती। खुशबू नहीं लगा सकती। और इसी तरह से औरत जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ है, यानी बेवगी से पहले जहाँ शौहर के साथ रहती थी, तो मसनून और पसंदीदा अमल के कि औरत उसी घर में रहे। कोई एक्सेप्शनल केस है, दौरान सफ़र शौहर का इंतकाल हो गया, या जहाँ रहती थी उसके साथ अब वहाँ रहेगी तो अकेली है, महरम नहीं है, उसकी इज्जत को खतरा है, तन्हाई है, कुछ साइकिक केस बन गई कि अभी इधर रही तो बहुत सारी यादें हैं, इसके लिए एक्सेप्शनल केसेस मौजूद हैं। लेकिन पसंदीदा बात यह है कि औरत 4 महीने 10 दिन उसी घर में रहे, दिन में कहीं ज़रूरत के तहत जाना चाहे जा सकती है, लेकिन उसमें आराइश और ज़िबाइश और नुमाइश नहीं होगी। रात तक घर आ जाना बेहतर है। बस दफ़ा हमारे कल्चर में इतनी अफरात और तफरीत है कि ऐसी औरत को बिल्कुल, वो कहना चाहिए कि टेढ़ी नज़रों से लोग देखने लगते हैं, घर से भी नहीं निकलने देते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, घर में रहना है, यानी जैसे हम आजकल अपने घर में रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम बाहर है ना, ज़रूरत के लिए गए बाहर आ गए। कोई ऐसी ज़रूरत है जिसको पूरा करना है, मिसाल एक औरत है, अब देखिए दुखी है, घर बैठेगी तो सारा वक्त क्या होगा, याद भी करेगी, रोएगी भी, धोएगी भी। अगर आप उसको किसी जगह कुरान की क्लास में ले आते हैं, कुरान सुनेगी तो तसल्ली मिलेगी, जुमे के दिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चली जाती है, नमाज़ पढ़ती है, किरत सुनती है, दिल को सुकून मिलता है, कोई हर्ज की बात नहीं। तो हम सब जानते हैं कि घूमने फिरने के लिए निकलना बाहर क्या होता है और ज़रूरत के लिए जाना क्या होता है। बाज़ दफ़ा सारों के प्रोटेक्टेड माहौल नहीं होते कि बेवगी की सूरत में सारा ख़ानदान ही मदद करने को तैयार है, बाज़ औरतें उनको घरों के खाने पीने, बच्चों के जो भी स्टाइल है, तो अल्लाह ताला ने इसको तकवा से जोड़ दिया, जो जितना तकवा रखेगा उतना करेगा। अब इसका ये भी नहीं मतलब कि फिर शादियों में भी जाए, दावतों में जाए। एक ऐसा वाक्या हुआ कि एक मौके पे कि शादी बेटे की थी और उसे 1 हफ्ता 10 दिन पहले बाप का इंतकाल हो गया, अब दूसरे मुल्क का चक्कर था, शादी तो नहीं डिले हुई, शादी हुई, अब ये बड़ा इशू है कि माँ क्या करे। तो बाज लोगों ने फिर ऐसी प्लीज दे के जी 40 साल की उम्र हो गई, बड़ी हो गई, उसको जेवर कपड़े पहना के भी शादी में ले आए, ये दुरुस्त नहीं। क्यों? अब सवाल होता है क्यों? कुछ जवाब तो आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह। चारों इद्दतों को जमा करके हम देखेंगे कि किस इद्दत में क्या हिकमत है, बल्कि बेहतर है कि कल ही इस पे ज्यादा बात करें। लेकिन अल्लाह ताला इन दिनों में औरत को अच्छे कपड़ों से रोककर उन सारे अच्छे जज्बात से रोक लेता है जो शौहर के साथ वाबस्ता थे। हम सब इसको मानते हैं ना कि हम जैसे कपड़े पहनते हैं हमारी सोच वैसी हो जाती है। घर के गंदे बू वाले कपड़े हो तो दिल करता है किसी अच्छी बात पे? इंसान बिल्कुल अपनी जान से बेजार होता है। जूं ही आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं, शादी पे जाने के लिए क्यों नहीं पहन रहे, तो एकदम चेंज होने लगती है ना सोच। इसीलिए आप देखिए कि जो लिबास आप पहनते हैं खुद या बच्चियाँ, आप जो कपड़े पहनते हैं उसका असर आपकी शख्सियत पे आता है। फिर मैं एक जुमला बोल दूं तो आपको बुरा लगेगा कि बच्चियों को बहुत फैंसी कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। बहुत चमकते दमकते खूबसूरत फिटेड कपड़े कुंवारी बच्चियों को पहनाते हैं, जब वो खुद पहनती हैं तो जज्बात आते हैं। ढीला ढाला रखिए, ढीली ढाली जिंदगी गुजरेगी, जब शादी होगी फिर जो करना होगा करेंगे। और हमारे बड़े ऐसा करते थे, मैं नहीं कहती कि वो सब ठीक करते होंगे, लेकिन सिर्फ इशारा है। बेवगी में, इद्दत में अल्लाह ताला ने इस पे रोक कर औरत को असल में ठेस लगने से बचाया। शादियों ब्याहों पर क्यों नहीं जाए? वहां जाएगी तो फिर सुहागनों को देखेगी तो अपनी शादी याद आ जाएगी। यानी औरत को मजीद सदमों से बचाने के लिए उसको कहा कि प्रोटेक्टेड होके घर में रहो, शौहर को याद करेगी, दीन की तवज्जो होगी, अल्लाह से प्यार होगा। और बहुत सारी औरतें ऐसे वक्तों में दिल अल्लाह से जुड़ जाता है। कभी कोई ऐसी दुखी बहन भाई हो तो इन दिनों में बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उनको कुरान से जोड़ दें, हदीस से जोड़ दें, इल्म की किसी महफिल से जोड़ दें। घर में बैठ के कुरान इल्म सीखना चाहें तो आप देखेंगे कि वो इद्दत के बाद बिल्कुल दुनिया बदली होगी। एक और अफरा तफरी देखी कि बाज़ लोग हमारे कल्चर में इद्दत में औरतों के लिए लाजिम क्या सोचते हैं, इनको पर्दा करना है, बूढ़ों से भी कर रही होती हैं। और जो ही इद्दत ख़त्म तो उस दिन आके तो ख़ानदान के जो लड़के बड़के बड़े छोटे सब आके मिल रहे हैं और बातें, फिर वही पुरानी किस्से शुरू हो गए। तो जितना पर्दा आपके और मेरे ऊपर फ़र्ज़ है ना, इतना ही इद्दत वाली औरत पे भी फ़र्ज़ है। अब कोई ये बीच में एक्सेप्शनल केस जो हमने देख लिया कि कोई दूसरा मर्द शादी करना चाहता है, या कोई घर वाले सोच रहे हैं कि फलां की बेटी बेवा हो गई है, चलो इससे हम बाद में अपने बेटे का कर लेंगे, तो दिल में रख के अच्छे तरीके से जिक्र कर दें। मिसाल है कि किसी की बेटी खुदा ना खास्ता बेवा हो गई है, अब आपको लगता है अच्छी लड़की थी, चलो हम अपने बेटे से करते हैं, फिर क्या हुआ अगर हमारा बेटा कुंवारा है या जैसा है, या कुंवारा भी हो सकता है, शादीशुदा भी था, तो आप सोच रहे हैं कि इसका इधर रिश्ता बनता है, तो आप अच्छे तरीके से कर दें। हम भी अपने बेटे के लिए देख रहे हैं तो हमें जिक्र कीजिएगा, या इस बच्ची की शादी दोबारा करने से पहले हमसे पूछ लें, वो वहाँ बात की जा सकती है। लेकिन ये जो अंदर खाते की जो रिश्ते बातें, ये सारी चीज़ें वो दुरुस्त नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि मारूफ तरीके से कहना क्या है, मसलन जैसे कोई मर्द बेवा से कह दे कि अल्लाह ताला मुझे कोई तुम जैसी सवाले औरत दे दे, यानी मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि मुझे कोई नेक औरत निकाह के लिए मिल जाए, तो ये भी इशारा है, यानी इस हद तक की इजाज़त है। और दिल में छुपाना तो आपको पता ही है कि ये सारा कुछ होता ही है। फिर आप देखिए कि सतस कुरूना होना कितनी बड़ी हकीकत है। बिल्कुल ऐसा बंदा वाकई लोगों के जिक्र में आया होता है जिसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हादसा हो सकता है, कोई ऐसी बात होती है, तो अल्लाह सुबहान तआला ने इधर शादी से रोक दिया। इद्दत के दौरान शादी करना क्या नुकसान होता है? क्यों कहा कि वला ताज़ी मुकद्दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताब व अजलहू? तो आप देखिए कि पीछे तलाक में तो इतनी बात वाजे नहीं होती क्योंकि उसमें तो शौहर बीवी बस बस साथ ही रह रहे होते हैं ना, लेकिन बेवकी में ये बात समझ आती है कि इद्दत के जो मकासद है ना बड़े बड़े, उसमें से एक सबसे बड़ा मकसद इस्तबराए रहम है। इस्तबरा कहते हैं बरी होना, बरात मिनल्लाह, शबे बरात का लफ्ज़ है वही है ये, यानी ये मेक श्योर हो जाए कि औरत का रहम बच्चे से खाली है। ठीक है, 3 महीने का वक्त इतना जो वहां देखा था, यहाँ 4 माह 10 दिन है। आपके दिन में क्वेश्चन आ सकता है कि वहां 3 माह थे तो यहाँ 4 माह 10 दिन क्यों है, खुला में 1 महीना क्यों है, फर्क है ना इद्दतें। कल के सबक में आप 2-3 इद्दतें और पढ़ेंगे, तो यहाँ जितनी बात समझ आई भी उसको ही बस समझ लें कि औरत की फीलिंग्स फर्क होती हैं। जब वो खुद तलाक लेती है ना तो वो जहनी तौर पे पहले ही मेच्योर होती है, उसको धचका नहीं लगता, सडन चोट नहीं होती। तो 1 महीने में इस्तबराए रहम भी हो गया, और हो सकता है हालात इतने नासाज हों कि बीवी ने पहले शौहर को अपने पास आने ही ना दिया, तो वो चांसेस भी कम होंगे कि पेट में बच्चा, ठीक है, और जहनी तौर पे तैयार थी तो 1 महीने में फारिग कर दिया, इट्स ओके। फिर उसके बाद आप देखिए कि बेवकी की इद्दत सबसे लंबी है, 4 माह 10 दिन। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चोट पड़ती है। ये तो आप सब भी मानते हैं कि तलाक भी औरत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन उसमें पहले इतनी बदमजगियां होती हैं कि औरत को सूझ रहा होता है कि अब कोई चोट पड़ने वाली है, कम चोट है। फिर भी 3 माह दिए कि तुम इमोशनली अपने आप को इवन कर लो। बेवकी में चोट ज्यादा होती है। अल्लाह के नबी ने कहा कि शौहर का मामला औरत के लिए अजीब ही है। एक औरत थी मैदान जंग में, शौहर बाप बेटा भाई सब गए हुए थे। थोड़ी देर में खबर मिली बाप शहीद हो गए, इन्ना लिल्ला पड़ा, कहा अल्लाह मुझे शहीद की बेटी कर दिया। थोड़ी देर बाद भाई की खबर मिल गई, कहा अच्छा अल्लाह ने मुझे शहीद की बहन कह दिया बेटे की। लेकिन जब आखिर में शौहर की खबर मिली तो एकदम धड़े मार के रोने लगी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि औरत को शौहर से अजीब ही नस्बत है, और अल्लाह सबके ही सलामत रखे, लेकिन किसी एक को तो पहले जाना ही होता है। तो 4 माह 10 दिन जो है ये असल में कम किया गया 1 साल से। ये कल सुने, कल आएंगे तो सुनेंगे, नहीं तो फिर अगले सबक में आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला इंसानों को किस तरह से लेता है, और ये सारी चीज़ें कर करा के। इसमें एक्सेप्शनल केसेस सिर्फ एक ही हैं, इद्दत 4 माह 10 दिन से कम भी हो सकती है। आपको पता है कि बेवगी की इद्दत सिर्फ 1 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है, 4 दिन की भी हो सकती है, और 9 महीने की भी हो सकती है। कब? जब पेट में बच्चा हो। इद्दत का ताल्लुक इस्तबराए रहम से है। जब पता चल गया पेट में बच्चा है, अब दूसरी जगह निकाह यहाँ क्यों रोका जा रहा है? कि इस्लाम नस्ब की हिफाजत चाहता है। ये नहीं चाहता कि एक मर्द का नुतफा दूसरे से मिल जाए, बाद में पता ही ना चले कि बच्चा किसका कहाँ है। दौरे जाहिलियत में इतनी जहालत फैली हुई थी कि शादी के 10 मुख्तलिफ तरीके थे, जिसको आज आप खुल्लम खुल्ला जिना कह सकते हैं। 10 10 मर्द एक एक औरत के पास आते थे, और जब औरत प्रेग्नेंट होती थी तो क्याफा शनासों को बुलाते थे, वो बच्चे के फीचर्स देख के बताते थे ये फलां मर्द का हो सकता है। किसी तरीके में मर्द खुद अपनी बीवी से जिना करवाता था, और बाद में बच्चा पैदा होता तो फख्र करता था कि बड़े शख्स का बच्चा हमारे घर आ गया। इस तरह की जहालत की हद थी। कभी लड़का लड़की खुद जाके कोर्ट मैरिज कर लेते थे, कहीं कुछ इस तरह के हालात मौजूद थे। लेकिन इस्लाम क्या चाहता है? कि नस्ब सलामत रहे। तो ये जो कैद है कि इद्दत के दौरान निकाह ना करो, ताकि मेक श्योर हो जाए कि किसी और का बच्चा ना हो। हदीस में आता है कि वो औरत जो किसी और का बच्चा किसी खानदान में खींच लाई। बाज़ औरतें हैं कि बीवियां किसी और की होती हैं, ताल्लुकात किसी और से चलते हैं, बच्चा हुआ तो लोगों ने यही समझा इसका, तो उसके लिए बहुत बड़ी वईद है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें इस इस्लाम की कदर की तौफीक दे, और हम इसके ऊपर अपने आप को मुतमईन भी पाएं। आप देखिए गफूरुन हलीम है आखिर में, फिर अल्लाह ताला डरा भी रहा है। ये सब काम तब होंगे जब दिल में अल्लाह सुबहान तला की मोहब्बत भी होगी, और हम अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन मामला करेंगे। कुछ चीज़ें जो अभी इस वक्त मैंने जान के नहीं की, क्योंकि कल फिर ये मौजू थोड़ा सा आएगा दूसरे एंगल में, तो इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे। अल्लाह ताला हम सब का फहम खोल दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबके शौक के लिए बता दूं कि अगला सबक जो होगा उसमें हक महर के नाते से इद्दत और तलाक की बातें होंगी। आपको लग रहा है कि हर मौजू खुल खुल के आ रहा है, ना कभी सुना, ना कभी सोचा, ना पढ़ा, ना जाना, ना कोशिश की।
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم